नमस्ते। शिक्षा पर प्रेरक और मार्ग प्रशस्त करने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एजुकेशन विजन में आपका स्वागत है। आज हम फ्रांस के स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय के डॉक्टर तचिबोजो द्वारा एक शोध प्रस्तुत करेंगे। इस शोध में संबोधित प्रश्न है, क्या शैक्षिक शोधकर्ताओं का शिक्षा नीति पर प्रभाव है? यह किस बारे में है?
2019 से 2022 तक किए गए इस शोध के हिस्से के रूप में चिबोजो ने 99 शिक्षा शोधकर्ताओं और 15 शिक्षा नीति विशेषज्ञों का सर्वेक्षण किया, जिनमें से सभी को 44 देशों को कवर करते हुए अनुसंधान नीति सहयोग में अनुभव है। शोधकर्ताओं के बीच, जबकि कुछ राजनीतिक कार्रवाई में ध्यान में रखे गए शोध निष्कर्षों के मामलों की गवाही देते हैं, उनमें से अधिकांश ने अपना असंतोष व्यक्त किया। कई लोगों ने रेखांकित किया कि उनके सुझावों पर विचार नहीं किया गया था। कुछ अन्य ने सुझाव दिया कि उनके शोध इनपुट ने पूर्व निर्धारित दिशाओं को वैध बनाने के लिए एक बहाने के रूप में कार्य किया था। साथ ही विशेषज्ञों ने शोधकर्ताओं के योगदान पर अविश्वास व्यक्त किया है। इन विशेषज्ञों के अनुसार शोधकर्ता उन्हें मजबूत और विश्वसनीय आंकड़े और माप प्रदान करने में विफल रहे हैं। विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि जबकि कुछ शोधकर्ता बहुत अच्छे हैं, दूसरों के पास उनकी शब्दावली में वैधता और विश्वसनीयता शब्द नहीं हैं। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी नोट किया कि शिक्षा के कई क्षेत्रों में गुणात्मक दृष्टिकोण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना अनुसंधान की संभावित प्रभावशीलता को सीमित करता है। ये अवलोकन यूनाइटेड किंगडम में नॉटिंघम विश्वविद्यालय में शेल सेंटर फॉर मैथमेटिकल एजुकेशन के प्रोफेसर ह्यू बर्कहार्ट के एक अन्य शोधकर्ता के साथ मिलते हैं। शैक्षिक डिजाइनर जर्नल में 2019 के एक लेख में प्रोफेसर बर्कहार्ट ने बताया कि नीति निर्माताओं द्वारा शैक्षिक अनुसंधान की स्थिति को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
अनुसंधान और नीति के बीच इस अंतर के क्या कारण हो सकते हैं?
डॉक्टर चिबोजो तीन प्रमुख कारणों को अलग करते हैं जो शैक्षिक नीति के विकास पर शैक्षिक शोधकर्ताओं के प्रभाव की कमी की व्याख्या कर सकते हैं। पहले सेट का पहले ही बर्कहार्ट द्वारा विश्लेषण किया जा चुका था। यह स्वयं शैक्षिक शोधकर्ताओं की प्राथमिकताओं से संबंधित है। इन प्राथमिकताओं में विचारों में अंतर पर जोर देने की प्रवृत्ति है, ताकि अनुशासनात्मक सहमति पैदा करने के बजाय, जो नीति निर्माताओं पर बाध्यकारी होगी, दूसरों से अलग दिखें। एक अन्य वरीयता मॉडलिंग अनुभवजन्य परीक्षणों प्रयोगों की प्रतिकृति पर सट्टा सोच को प्राथमिकता देने के बारे में है, जबकि नीति निर्माता समाधान, उपचार और उपकरणों की अपेक्षा करते हैं। शैक्षिक शोधकर्ता व्यक्तिगत दृश्यता को भी पसंद करते हैं, जो उन्हें बड़े टीम अनुसंधान का त्याग करने की ओर ले जाता है, जो अभी भी सार्वजनिक नीति को निर्देशित करने के लिए आवश्यक व्यापकाधारित परिणामों को सुरक्षित करने में अधिक सक्षम होगा। बर्कहार्ट के अनुसार ये सभी प्राथमिकताएं शैक्षिक अनुसंधान के नीतिगत संदेशों को धुंधला कर देती हैं और उन्हें अधिकार, विश्वसनीयता और सामान्य प्रासंगिकता से वंचित कर देती हैं। यह अंतः शैक्षिक अनुसंधान को अश्रव्य और नीति निर्माताओं के लिए बहुत कम रुचि की ओर ले जाता है। शैक्षिक अनुसंधान शैक्षिक नीति को प्रभावित करने में विफल होने के कारणों का दूसरा सेट इस बात से संबंधित है कि शैक्षिक शोधकर्ता स्वयं अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं और वे अपनी गतिविधि का अभ्यास कैसे करते हैं। 2001 में डायने स्टोन, साइमन मैक्सवेल और वार्विक विश्वविद्यालय के माइकल कीटिंग की एक रिपोर्ट ने शोधकर्ताओं के प्रति नीति निर्माताओं के रिजर्व पर जोर दिया। इन लेखकों के अनुसार नीति निर्माता शोधकर्ताओं को अक्सर कट्टरपंथी प्रश्नों, प्रतिमान बदलावों और नवाचारों का प्रस्ताव देने के लिए प्रवृत्त देखते हैं। इनमें से प्रत्येक अधिक अवास्तविक और अगले की तुलना में महंगा है। 2006 में ऑस्ट्रेलिया में मोनाश विश्वविद्यालय के ट्रेवर गेल ने सुझाव दिया कि शिक्षा शोधकर्ता नीति की प्रकृति का अधिक विश्लेषण करते हैं, जबकि स्पष्ट रूप से अनदेखा करते हैं कि वे स्वयं नीति को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। 2015 में जॉर्जेटा आयन और रोमिता इयुकु ने शिक्षा अनुसंधान कार्यों की दुर्गम भाषा की ओर इशारा किया। 2021 में करेन स्मिथ, स्कॉट फर्नी और निक पिल्चर ने दिखाया कि नीतिगत कार्रवाई में निहित त्वरित गति और समय की अनुपलब्धता समय सीमा, अस्थायीता और समय के साथ असंगत है, जिसकी शोधकर्ताओं को उचित अनुसंधान विकसित करने की आवश्यकता है। डॉक्टर तचिबोजो का पेपर कारणों के तीसरे सेट पर केंद्रित है। यहाँ फोकस इस बात पर है कि कैसे नीति विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के बीच सहयोग की प्रक्रिया वास्तव में शोधकर्ताओं की भागीदारी के लिए हानिकारक है। तीन पहलुओं का विशेष महत्व है। सबसे पहले, विशेषज्ञ शोधकर्ताओं की सहयोगी टीमों का कामकाज अक्सर एक शोधकर्ता से बहुत दूर होता है, जबकि शोधकर्ताओं से अपने संबंधित क्षेत्रों में वर्तमान शैक्षणिक मानकों के अनुसार अनुसंधान करने की उम्मीद की जाती है, विशेषज्ञों के सहयोग से अनुसंधान अक्सर संस्थागत नियमों और लेखा तर्कों, प्रदर्शन, उत्पादकता, लेखा परीक्षा, संकेतक, नियंत्रण आदि के लिए जुनून द्वारा नियंत्रित होता है। इस तरह के सहयोगी शोध में राजनीतिक और सामाजिक चालकों का भी प्रभुत्व है। उदाहरण के लिए, अनुसंधान प्रक्रिया में नागरिक समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने या सार्वजनिक सेवा उपयोगकर्ताओं की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरे, जबकि शोधकर्ता उम्मीद करते हैं कि सहयोग जनता की भलाई में योगदान देने, समाज के लिए उपयोगी होने और साक्ष्य, ज्ञान और अनुसंधान के आधार पर नीति विकसित करने के लिए एक अवसर होगा, कई सर्वेक्षण किए गए शोधकर्ताओं ने पक्षपातपूर्ण विचारधारा, शक्ति के खेल, व्यक्तिगत की निंदा की कार्यसूची, अहं और व्यक्तिगत संबंध जो अक्सर इन सहयोगों में प्रबल होते हैं। तीसरा, पेशेवर व्यक्तित्व और पेशेवर संस्कृतियों के मामले में शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों के बीच स्पष्ट अंतर के कारण सहयोग मुश्किल है। पेशेवर मूल्यों के संबंध में सर्वेक्षण के नमूने में 86% शोधकर्ताओं ने नैतिकता पर बहुत अधिक महत्व देने की घोषणा की, जबकि केवल 60% विशेषज्ञों ने ऐसा किया। पेशेवर उद्देश्यों के संबंध में शोधकर्ता व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास, अनुसंधान करने और ज्ञान के विकास में योगदान देने पर जोर देते हैं, जबकि विशेषज्ञों का ध्यान जनता की सेवा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता में सुधार पर है। कार्य सिद्धांतों के संदर्भ में शोधकर्ता लक्ष्यों और तरीकों में स्पष्टता और ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं, जबकि विशेषज्ञों का आदर्श वाक्य समय सीमा को पूरा करना, सामाजिक विविधता का सम्मान करना और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। अंत में, जब काम करने के तरीकों की बात आती है, तो शोधकर्ता गुणात्मक तरीकों और केस स्टडीज को बहुत महत्व देते हैं, जिसके लिए विशेषज्ञ बिल्कुल भी संदर्भ नहीं देते हैं। अस्वाभाविक रूप से सहयोग प्रक्रिया में ये सभी कठिनाइयां तनाव और संघर्ष की ओर ले जाती हैं, जो सहयोग में शामिल होने के लिए अनुकूल नहीं हैं। लेकिन सबसे ऊपर डॉचिबोजो के अनुसार सहयोग प्रक्रिया की यह वास्तविकता निश्चित रूप से आत्मभिष्करण और बहिष्करण की ओर दोहरी प्रवृत्ति को ट्रिगर करती है। आत्मभिष्करण एक तरफ, क्योंकि शोधकर्ता खुद को नीति निर्माण से दूर करता है। नीति निर्माण में भागीदारी उनके विकास, अनुसंधान और ज्ञान के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक विशेषाधिकार प्राप्त साधन प्रतीत नहीं होता है। शैक्षिक अनुसंधान समुदाय भी नीति सहयोग में शोधकर्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित और महत्व दे सकता है। यह विशेष रूप से भविष्य के शोधकर्ताओं के प्रशिक्षण के दौरान किया जा सकता है। अनुसंधान समुदाय सहयोग में भागीदारी के अनुभवों की पहचान, समर्थन और मूल्य भी कर सकता है।
अंत में, इस शोध से उपजी मुख्य सिफारिश क्या है?
इस शोध से पता चलता है कि शैक्षिक नीति पर प्रभाव पुनः हासिल करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान के लिए विभिन्न प्रकार के उत्तोलक जुटाए जा सकते हैं। बर्कहार्ट द्वारा उल्लिखित अनुसंधान समुदाय की प्राथमिकताओं के समानांतर नीतिगत विचारों को व्यक्त करने के लिए समर्पित पूरक चैनल विकसित करने पर विचार किया जा सकता है, जो कुछ समुदाय की सहमति को दर्शाते हैं। शिक्षा अनुसंधान समुदाय भी नीति के सहयोग से शोधकर्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित और महत्व दे सकते हैं। यह विशेष रूप से भविष्य के शोधकर्ताओं के पाठ्यक्रम में नीतिगत सहयोग भूमिकाओं और दृष्टिकोणों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। अनुसंधान समुदाय भी शोधकर्ताओं के करियर में शामिल होने के अनुभवों को पहचान, समर्थन और महत्व दे सकते हैं।
धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हमें आशा है कि आपने एपिसोड का आनंद लिया होगा। जल्द ही फिर मिलेंगे।